हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है, जो लोग उसे मान कर भले काम करने लगे उन्हें ये बशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखिरत को ना माने उन्हें ये खबर देता है कि इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। सूरह बनी इसराइल आयत 9 और 10। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो इसके लिए खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं, तब अजाब का फैसला इस बस्ती पर चश्मा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह अलैहि सलाम के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई आजला का ख्वाहिशमंद हो उसे यही हम दे देते हैं, जो कुछ भी जिसे दुनिया चाहे। फिर इसके मखसूम में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मलामत सदा और रहमत से महरूम होकर। बनी इसराइल आयत 16-18। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना बैठ, वरना तू जहन्नुम में डाल दिया जाएगा मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। बनी इसराइल जुज आयत 39। तशरीह। आजला के लगवी माने हैं जल्दी मिलने वाली चीज, और इस्तलाहन कुरान मजीद इस लफ्ज को दुनिया के लिए इस्तेमाल करता है जिसके फायदे और नतायज इसी जिंदगी में हासिल हो जाते हैं। इसके मुकाबले की इस्तलाह आखिरत है जिसके फवायद और नतायज को मौत के बाद दूसरी जिंदगी तक मौखर कर दिया गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और याद करो जबकि हमने मलाइका से कहा कि आदम को सिजदा करो तो सब ने सिजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। इसने कहा, क्या मैं उसको सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने उसे मुझ पर फजीलत दी? अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बेकनी कर डालूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तू जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करें तुझ समेत उन सब के लिए जहन्नुम ही भरपूर जजा है। तू जिस जिसको अपनी दावत से फुसला सकता है फुसला ले, इन पर अपने सवार और पैदे चढ़ा ला, माल और औलाद में इनके साथ साजा लगा और इनको वायदों के हाल में फांस। और शैतान के वायदे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। बनी इसराइल आयत 61-64। तशरी। बेकनी कर डालूं यानी इनके कदम सलामती की राह से उखाड़ फेंकूं। एहतनाक के असली माने किसी चीज को जड़ से उखाड़ देने के हैं। चूंकि इंसान का असल मुकाम खिलाफत इलाही है जिसका तगाजा इताअत में साबित कदम रहना है, इसलिए इस मुकाम से उसका हट जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी दरख्त का बेखुबन से उखाड़ फेंका जाना। इस्तफजाज के माने हैं किसी को हल्का और कमजोर पाकर उसे बहा ले जाना या इसके कदम फिसला देना। اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پائدے چڑھا لائے اور ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو، ادھر چھاپا مارو اور وہاں غارت گری کرو۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ سب جن اور انسان ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروؤں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بنا ہوا ہے۔ محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں وہ حصے دار نہیں، مگر اس کے اشاروں پر یہ بیوقوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک بلکہ شریک غالب ہے۔ اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے اور اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے گویا اس اولاد کا تنہ وہی باپ نہیں ہے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ بنی اسرائیل آیت 97۔ تشریح، یعنی جیسے وہ دنیا میں بن کر رہے کہ نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔